एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक ऐसे सफर पे निकल रहे हैं जो हमें इतिहास के कुछ बहुत ही अंधकार में कोनों में ले जाएगा, लेकिन साथ ही ये मानवीय आत्मा की जो जटिलताएं हैं ना, उन पे भी शायद कुछ रोशनी डालेगा। बात हो रही है प्रिमो लेवी की
जी, और उनकी अंतिम और शायद सबसे मार्मिक कृति द ड्राउंड इन द सेव्ड।
द ड्राउंड इन द सेव्ड
जी, मूल इतालवी में आइसोमेर्सी ए इसल्वाती। 1986 में आई थी ये किताब, उनकी मृत्यु से कुछ ही पहले।
अच्छा।
और ये सिर्फ किताब नहीं है, मतलब ये निबंधों का संग्रह है, संस्मरण है, और एक तरह से कहें तो एक दार्शनिक गवाही है। इसमें लेवी ने ऑशविट्स के अपने अनुभव और उसके बाद के, आप सोचिए, 40 साल के चिंतन का पूरा निचोड़ रखा है।
प्रिमो मिशेल लेवी खुद एक इतालवी यहूदी रसायनक, एक लेखक और एक ऐसे व्यक्ति जिनकी पहचान हॉलोकॉस्ट उत्तरजीवी के तौर पर हमेशा के लिए जुड़ गई।
बिल्कुल, 1944 में ऑशविट्स में उनका निर्वासन वो एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ उनके जीवन को बल्कि शायद हमारी 20वीं सदी की जो सामूहिक स्मृति है उसे भी एक आकार दिया।
उन्हें अक्सर 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण गवाहों में गिना जाता है।
हाँ, और वजह सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने वो सब झेला, बल्कि जिस तरह से उन्होंने उस अनुभव का विश्लेषण किया, एकदम ठंडे दिमाग से, वैज्ञानिक सटीकता के साथ, पर गहरी मानवीय अंतर्दृष्टि भी थी उसमें। उन्होंने हमें ये दिखाया कि भयंकर बुराई के सामने भी इंसान का जो लचीलापन है और उसकी जो नैतिक दुविधाएं हैं वो कितनी जटिल हो सकती हैं।
ये किताब इसलिए भी शायद ज्यादा झकझोरती है क्योंकि ये कोई आसान जवाब नहीं देती है ना? लेवी का जो मुख्य तर्क है वही अपने आप में एक चुनौती है।
क्या तर्क है वो?
कि जो लोग कैंपों से बचकर निकले वे शायद अंतिम भयावहता के सबसे कम प्रतिनिधि गवाह थे। ये हमें अस्तित्व की असल कीमत, मिली भगत की संभावनाओं और यहाँ तक कि खुद स्मृति कितनी अविश्वसनीय हो सकती है, इन सब असहज सचों का सामना करने पर मजबूर करती है।
हाँ, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये इंसानियत की प्रकृति में गहरी दार्शनिक जांच है।
जैसा आपने कहा,
लेवी हमें उस ग्रे जोन में ले जाते हैं।
ग्रे जोन?
हाँ, वो इलाका जहाँ नैतिक पैमाने धुंधले पड़ जाते हैं, जहाँ पीड़ित कौन है और उत्पीड़क कौन, इसके बीच की रेखा उतनी साफ नहीं रहती जितनी हम शायद सोचना पसंद करते हैं।
अच्छा।
तो ये बौद्धिक रूप से बहुत उत्तेजक है, पर साथ ही भावनात्मक रूप से भी काफी भारी है।
तो चलिए इस असाधारण व्यक्ति प्रिमो लेवी के जीवन की यात्रा को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। कहानी शुरू कहाँ से होती है? तुरिन 1919
है कि उनका परिवार आत्मसात था, मतलब इतालवी समाज में काफी घुला मिला हुआ। उनकी यहूदी पहचान ज्यादातर सांस्कृतिक थी, धार्मिक रीति रिवाजों वाली उतनी नहीं।
और परिवार में कौन कौन थे?
पिता सेजारे लेवी एक इंजीनियर थे, माँ एस्थिर लुजाती। लेवी बचपन से ही कहते हैं पढ़ने लिखने के शौकीन थे, दिमाग तेज था पर थोड़े शर्मीले थे और शारीरिक रूप से भी थोड़े कमजोर।
और विज्ञान में उनकी रुचि बचपन से ही थी, खासकर रसायन विज्ञान में?
हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे रसायन विज्ञान का जो तर्क है, जो व्यवस्था है, जो स्पष्टता है, उसने उन्हें बहुत आकर्षित किया। और ये वैज्ञानिक नजरिया, चीजों को ध्यान से देखना, उन्हें समझना, उनका विश्लेषण करना, ये बाद में उनके लेखन की पहचान बन गया।
शिक्षा भी उनकी तर्कसंगत ही रही?
जी, धर्मनिरपेक्ष तर्कसंगत शिक्षा, पर साथ ही साहित्य से भी गहरा लगाव था। दांते की डिवाइन कॉमेडी का उन पर बहुत असर था, जिसका जिक्र वो अपने ऑशविट्स संस्मरणों में भी करते हैं।
तो ये दोनों चीजें, विज्ञान की सटीकता और साहित्य की संवेदनशीलता, उनके काम में मिलती हैं।
अद्भुत रूप से मिलती हैं। हाँ,
लेकिन उनके युवा होने का समय, वो इटली के लिए बड़ा उथल पुथल वाला था, फासीवाद सिर उठा रहा था।
बिल्कुल, जब वो ट्यूरिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पढ़ी रहे थे, तभी 1938 में मुसोलिनी सरकार ने वो नस्ली कानून लागू कर दिए।
अच्छा, उनका क्या असर पड़ा?
असर बहुत बुरा पड़ा। इतालवी यहूदियों को नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, उन्हें शिक्षा से, कई व्यवसायों से बाहर कर दिया गया। यूनिवर्सिटी से यहूदी छात्रों और प्रोफेसरों को या तो निकाल दिया गया या एकदम हाशिए पर धकेल दिया।
और इसी माहौल में लेवी अपनी डिग्री पूरी कर रहे थे।
हाँ, और विडंबना देखिए, 1941 में उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की, वो भी सुम्मा कम लाउडे के साथ, मतलब सर्वोच्च सम्मान के साथ। लेकिन उनके डिप्लोमा पर क्या लिखा था? यहूदी नस्ल का।
ओहो, ये तो अपने ही देश में पराया बना देने जैसा था।
बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्रशासनिक टिप्पणी नहीं थी, ये उनके अलगाव का प्रतीक बन गई। नौकरी मिलना तो लगभग नामुमकिन हो गया, उन्हें चिपकर गलत नामों से छोटे मोटे काम करने पड़े।
और इसी दौरान वो प्रतिरोध आंदोलन से भी जुड़े?
हाँ, फासीवाद विरोधी प्रतिरोध से। हालांकि वोर उनके साथ ही ज्यादा अनुभवी नहीं थे, और दिसंबर 1943 में पहाड़ों में फासीवादी मिलिशिया ने उनके ग्रुप को पकड़ लिया।
और यहीं उन्होंने वो फैसला किया पूछताछ के दौरान।
जी, उन्हें लगा कि अगर वो खुद को राजनीतिक बंदी यानी पक्षपाती बताते हैं तो शायद उन्हें फौरन गोली मार दी जाए, लेकिन अगर वो यहूदी होना स्वीकार करते हैं तो शायद उन्हें जेल में डाल दिया जाए।
उन्होंने कम खतरनाक रास्ता चुना ऐसा सोचकर।
हाँ, उन्होंने स्वीकार किया कि वो यहूदी हैं, लेकिन इसका नतीजा उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक निकला।
क्या हुआ फिर?
इस स्वीकारोक्ति ने, समझिए, उनके भाग्य पर मोहर लगा दी। उन्हें पहले फॉसोली ट्रांजिट कैंप भेजा गया, और फिर फरवरी 1944 में एक मालगाड़ी में जानवरों की तरह भरकर ऑशविट्स भेज दिया गया।
ऑशविट्स?
वहां उन्हें कैदी नंबर मिला 174517।
जी।
और उन्हें मोनोविट्स बूना लेबर कैंप में रखा गया। ये आईजी फार्बन कंपनी के सिंथेटिक रबर प्लांट के लिए बनाया गया था। वहां उन्होंने भयानक हालात में 11 महीने गुजारे।
उनका वहां बच जाना ये तो एक तरह से चमत्कारी लगता है, क्या वजह रही?
लेवी खुद मानते थे कि ये कई चीजों का मिलाजुला नतीजा था। एक तो सरासर किस्मत।
किस्मत?
हाँ, सही वक्त पर सही जगह होना या ना होना। दूसरा, उनका केमिस्ट्री का ज्ञान।
कुछ वक्त बाद उन्हें कैंप के अंदर ही ब्यूना फैक्ट्री की लैब में काम मिल गया।
अच्छा, इससे कुछ राहत मिली होगी। हाँ, कड़ाके की ठंड से और वो जो कमर तोड़ मेहनत थी उससे कुछ हद तक बचाव हो गया। और तीसरा, वो जिसे बाद में उन्होंने अपनी सबसे अहम अवधारणा कहा, ग्रे जोन, मतलब जिंदा रहने के लिए किए गए नैतिक समझौते। और अंत में एक और बात, जनवरी 1945 में जब नाजी कैंप खाली करवा रहे थे, कैदियों को मौत के मार्च पर ले जा रहे थे,
हाँ,
तब लेवी स्कारलेट फीवर से बीमार थे कैंप के अस्पताल में। इसी बीमारी की वजह से वो उस मार्च पर जाने से बच गए, और कुछ ही दिनों बाद सोवियत रेड आर्मी ने कैंप को आजाद करा लिया।
युद्ध के बाद जब वो तुरिन लौटे तो उनके अंदर लिखने की एक जबरदस्त बेचैनी थी, है ना?
हाँ, उन्होंने खुद इसे एक तत्काल लगभग जैविक आवश्यकता कहा। जो अनुभव किया था उसे शब्दों में ढालना, उस अव्यक्त पीड़ा को बाहर निकालना उनके लिए सांस लेने जितना जरूरी हो गया था।
और इसी से उनकी पहली किताब निकली, इफ दिस इज अ मैन।
जी।
से क्वेस्टो ए उन वामो, यदि ये एक मनुष्य है। ये सिर्फ आप बीती नहीं थी, ये उस आघात को गवाही में बदलने की कोशिश थी, उस अराजकता को समझने की और जो मर गए उनके प्रति अपना फर्ज निभाने की कोशिश थी।
लेकिन दुनिया शायद उस वक्त ये सुनने को तैयार नहीं थी।
बिल्कुल नहीं। 1947 में जब किताब पहली बार छपी तो उसे बहुत कम ध्यान मिला। शायद लोग युद्ध की विभीषिका से तुरंत बाद ऐसी कहानियां नहीं पढ़ना चाहते थे।
तो लेबी ने क्या किया?
उन्होंने लगभग 30 साल तक दोहरा जीवन जिया। दिन में वो एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट थे, एक पेंट फैक्ट्री में मैनेजर, और शाम को या वीकेंड पर वो लिखते थे।
फिर पहचान कब मिलनी शुरू हुई?
1958 में जब इफ दिस इज अ मैन दोबारा छपी तब उसे दुनिया भर में पहचान मिली। धीरे धीरे वो हॉलोकॉस्ट साहित्य की एक क्लासिक बन गई, विश्व साहित्य का जरूरी हिस्सा।
और उसके बाद भी उन्होंने लिखना जारी रखा। हाँ, कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी, द ट्रूस जिसमें घर वापसी की लंबी यात्रा का वर्णन है, द पीरियोडिक टेबल 1975, ये बहुत ही अनोखी किताब है जिसमें उन्होंने केमिस्ट्री के तत्वों को अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ा है। फिर इफ नॉट नाउ व्हेन 1982, ये पूर्वी यूरोप के यहूदी पक्षपातियों के बारे में एक उपन्यास है।
और फिर अपने जीवन के आखिर में वो फिर से ऑशविट्स के अनुभव और उसके अर्थों की तरफ लौटे।
जी, 1977 में वो केमिस्ट्री के काम से रिटायर हो गए ताकि पूरा ध्यान लिखने पर दे सकें। और द ड्राउंड एंड द सेव्ड 1986 उनके जीवन भर के चिंतन का आप कह सकती है निचोड़ था। अस्तित्व, स्मृति, अपराध बोध, शर्म, नैतिक निर्णय, इन सब पर उनका अंतिम सबसे गहरा विश्लेषण।
और इस किताब के आने के लगभग एक साल बाद ही,
हाँ, अप्रैल 1987 में तुरिन में अपने घर की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। इसे आमतौर पर आत्महत्या माना जाता है, हालांकि कुछ लोग इसे दुर्घटना भी कहते हैं। पर उनकी आखिरी किताब का जो निराशाजनक स्वर है उसे देखते हुए कई लोग मानते हैं कि ये उनके गहरे अवसाद का एक दुखद अंत था।
लेवी की विरासत वो वाकई बहुत अलग है। उन्होंने सिर्फ बताया नहीं कि क्या हुआ, उन्होंने गवाही देने का मतलब ही बदल दिया।
सही कहा, उन्होंने एक वैज्ञानिक की नजर और एक मानवतावादी का दिल जोड़ा। ग्रे जोन की उनकी जो अवधारणा है उसने हमें सिखाया कि चरम हालात में नैतिकता कितनी पेचीदा हो जाती है। उन्होंने अस्तित्व, गवाही और नैतिक जिम्मेदारी के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं लेवी के मूल दर्शन और उन मूल्यों पर जो खासकर द ड्राउंड एंड द सेव्ड में सामने आते हैं। आपने उनके वैज्ञानिक नजरिए की बात की थी, ये उनके दुनिया को देखने के तरीके को कैसे प्रभावित करता था?
देखिए, लेवी बुनियादी तौर पर एक तर्कवादी थे। वो स्पष्टता, सटीकता और अनुभव से मिले सबूतों पर भरोसा करते थे। वो इंसानी बर्ताव को भी इसी तरह देखते थे। भावनाओं में बहने के बजाय वो समझने की कोशिश करते थे कि चीजें क्यों होती हैं, लोग ऐसा क्यों करते हैं, खासकर जब उन पर भयानक दबाव हो। उनका मानना था कि ऑशविच जैसे चरम हालात इंसान की किसी छिपे हुए असली स्वभाव को बाहर नहीं लाते, बल्कि वो ये दिखाते हैं कि हमारे नैतिक फैसले कितने ज्यादा हालात पर निर्भर करते हैं।
और किताब का नाम ही देखिए, द ड्राउंड एंड द सेव्ड, मतलब डूबे हुए और बचाए गए। ये उनके दर्शन का केंद्र है।
बिल्कुल, डूबे हुए या आइसोमर्सी वो लाखों लोग थे जो कैंपों में पूरी तरह नष्ट हो गए। शारीरिक रूप से तो थे ही, पर कई बार नैतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी वो गवाही देने के लिए बचे ही नहीं।
और बचाए गए,
बचाए गए आइसाल्वाती वो थे जो बच निकले, जो उत्तरजीवी थे। पर लेवी का जो तर्क है ना, और यही सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है,
क्या
कि जो बच गए वो जरूरी नहीं कि सबसे अच्छे सबसे नेक रोग थे। उनका बचना अक्सर भाग्य का खेल था, या चालाकी का, या फिर कुछ ऐसे नैतिक समझौतों का नतीजा था जो शायद ज्यादा आदर्शवादी या कमजोर लोग कर ही नहीं पाते,
और इसलिए वो डूब गए।
बिल्कुल, यही वो विरोधाभास है जिसकी लेवी बात करते हैं, कि जो सबसे भयानक सच के गवाह थे वो उसे बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहे।
लेवी उन कहानियों को भी नकारते हैं जो पीड़ितों को नायक और अपराधियों को राक्षस की तरह दिखाती हैं, है ना, या जो दुख में कोई गहरा मतलब ढूंढने की कोशिश करती हैं।
एकदम, वो होलोकॉस्ट की जो ग्रूर, बेतुकी, बुनियादी अर्थहीनता है उस पर जोर देते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी मानते हैं कि इस अर्थहीनता की गवाही देना, जो हुआ उसे जितना हो सके सटीक रूप से दर्ज करना, ये एक बहुत बड़ा नैतिक कर्तव्य है।
समझने और माफ करने पर उनके क्या विचार थे, ये अक्सर पूछा जाता है।
लेवी माफी देने से इनकार करते थे। उनका कहना था कि अपराधियों ने कभी सच्ची माफी मांगी ही नहीं, न ही कोई असली पछतावा दिखाया। लेकिन वो समझने की जरूरत पर बहुत जोर देते थे।
समझने पर?
हाँ, उनका मानना था कि जो हुआ उसे समझना, उसे सही ठहराना नहीं, बल्कि उसके पीछे का तंत्र, उसका मनोविज्ञान समझना, यही एकमात्र तरीका है जिससे हम भविष्य में ऐसी भयानक चीजों को दोहराने से रोक सकते हैं। वो कहते थे समझना जरूरी है, क्योंकि जो हुआ वो फिर से हो सकता है।
तो इस आखिरी किताब को लिखने के पीछे उनकी मुख्य प्रेरणा क्या थी? इतने सालों बाद वो फिर से उन दर्दनाक यादों में क्यों गए?
मुझे लगता है कई वजह थी। पहली, जैसा हमने कहा, डूबे हुओं के प्रति एक गहरा कर्तव्य। उन्हें लगता था कि जिंदा बचने वाले की ये जिम्मेदारी है कि वो उन लाखों लोगों की कहानी कहे जो खुद नहीं कह सकते। दूसरी, वो स्मृति के सरलीकरण के खिलाफ लड़ रहे थे। होता क्या है कि समय के साथ भयानक घटनाएं अक्सर सीधी साधी नैतिक कहानियों में बदल जाती हैं, अच्छाई बनाम बुराई। लेवी होलोकॉस्ट की जो भयानक जटिलता थी, उसका जो ग्रे जोन था, उसे फिर से सामने लाना चाहते थे। वो अपराधियों और पीड़ितों दोनों के बने बनाए ढांचों को तोड़ना चाहते थे,
और शायद भविष्य के लिए एक चेतावनी भी देना चाहते थे।
निश्चित रूप से, ये शायद उनकी सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक थी। वो दिखाना चाहते थे कि ऑशविट्स कोई दूसरी दुनिया की चीज नहीं थी। उसे बनाने वाली जो चीजें हैं, सत्ता के आगे आंख मूंद कर झुक जाना, वैचारिक कट्टरता, दूसरे को इंसान न समझना, नौकरशाही की उदासीनता, डर, ये सब इंसानी समाज में हमेशा मौजूद रहती हैं, भले ही छुपी हुई हों।
तो उनकी किताब एक तरह से सतर्क रहने, सवाल पूछने और नैतिक साहस दिखाने की अपील है।
बिल्कुल, और जिस तरह उन्होंने खुद मुसीबत का सामना किया वो भी असाधारण है। कैंप के अंदर भी वो एक तरह से विश्लेषक बने रहे।
हाँ, आपने कहा विश्लेषणात्मक स्वीकृति।
जी, जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपनी पहचान का एक हिस्सा एक सोचने वाले इंसान, एक वैज्ञानिक, एक देखने वाले के तौर पर बनाए रखा। वो कैंप की सामाजिक व्यवस्था, भाषा का इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल, कैदियों और गार्डों की सोच, इन सब का लगातार विश्लेषण करते रहे। शायद ये उनके लिए पागल होने से बचने का एक तरीका था,
और बाद में लिखना ऐसी विश्लेषण को जारी रखने का तरीका बन गया।
हाँ, साफ सदी हुई भाषा में लिखकर उन्होंने उस बेतु के अनुभव के चारों ओर एक तर्कसंगत ढांचा बनाने की कोशिश की। द ड्राउंड एंड द सेव्ड पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि ये कोई व्यक्तिगत उपचार की कोशिश है, बल्कि ये बौद्धिक ईमानदारी का एक बहुत ही कठोर प्रयास है।
लेवी के जीवन और उनकी सोच को और समझने के लिए कुछ ऐसे मोड़ थे जिन्होंने उनके रास्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या हम उनमें से तीन सबसे अहम बिंदुओं पर बात कर सकते हैं?
जरूर। पहला और सबसे जाहिर है फरवरी 1944 में ऑशविट्स पहुंचना। सोचिए, कई दिन मालगाड़ी में ठुसकर आने के बाद आप एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां चीख पुकार है, कुत्तों का भौंकना है, हवा में एक अजीब सी मीठी गंध है। फिर होता है सिलेक्शन।
सिलेक्शन,
हाँ, एक इशारे से तय होता है कि कौन काम करने लायक है और कौन सीधा गैस चैम्बर जाएगा। लेवी उन कुछ खुशकिस्मत लोगों में थे जिन्हें काम के लिए चुना गया। ज्यादातर लोग बूढ़े, बच्चे, कई औरतें गाड़ी से उतरने के कुछ ही घंटों में मार दिए गए।
इंसान से एक नंबर बन जाना, एक टुकड़ा, जैसा नाजी गार्ड कहते थे।
हाँ, श्टिक मतलब चीज या पीस। ये अनुभव उन्हें उस ग्रे जोन में धकेल देता है जहां इंसानियत के आम नियम लागू नहीं होते। यही उन्हें एहसास हुआ कि जिंदा रहना कितना ज्यादा संयोग पर निर्भर करता है, और इस एहसास ने एक उत्तरजीवी के तौर पर उनकी पहचान पर हमेशा एक बोझ डाल दिया।
ये जानना कि आपका बचना आपकी काबिलियत पर नहीं बस संयोग पर निर्भर था, ये कितना भारी रहा होगा।
हाँ।
दूसरा अहम मोड़ कौन सा था?
दूसरा मोड़ था 1944 की गर्मियों में हुई वो केमिस्ट्री की परीक्षा। कैंप में आईजी फारोबेन के जर्मन अधिकारियों ने कैदियों में से केमिस्ट्री जानने वालों की तलाश की ताकि उन्हें ब्यूना फैक्ट्री की लैब में काम पर लगाया जा सके। लिवी को एक जर्मन केमिस्ट डॉक्टर पेनविट्स के सामने परीक्षा देनी पड़ी
और वो चुन लिए गए।
हाँ, उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया और उन्हें चुन लिया गया। इस काम ने उन्हें कड़ाके की ठंड और सबसे मुश्किल शारीरिक मेहनत से बचाया, शायद उनकी जान बचाई।
लेकिन बाद में वो इस घटना को लेके काफी जटिल भावनाएं रखते थे।
हाँ, खासकर द ड्राउन्ड एंड द सेव्ड में। वो इस बात से परेशान थे कि उनका चुना जाना शायद किसी और कैदी के न चुने जाने की कीमत पर हुआ होगा। क्या उनके बचने का मतलब किसी और की मौत थी? ये घटना उनके लिए उस ग्रे जोन का प्रतीक बन गई जहां एक फायदा भी अपराध बोध का कारण बन सकता है।
और तीसरा निर्णायक मोड़, जो शायद उनके जीवन के दूसरे हिस्से को परिभाषित करता है,
वो था 1945-47 के दौरान इफ दिस इज अ मैन लिखने का फैसला। तुरंत लौटने के बाद, जैसा हमने कहा, उन्हें अपने अनुभव बताने की एक लगभग शारीरिक जरूरत महसूस हुई। ये सिर्फ कहानी कहने की इच्छा नहीं थी, ये गवाही देने की, जो हुआ उसे दर्ज करने की एक नैतिक जिम्मेदारी थी।
तो ये उनके अस्तित्व से गवाही की ओर एक स्थायी मोड़ था।
बिल्कुल, इसने एक लेखक के रूप में उनकी पहचान बनाई। लेकिन ये आसान नहीं था। उस भयानक अमानवीय अनुभव को एक सदी हुई समझने लायक भाषा में ढालना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मानसिक और भावनात्मक चुनौती थी।
ये उनके लिए उस आघात से जूझने का एक तरीका भी था शायद।
हाँ, उसे समझने का और शायद उस पर कुछ हद तक काबू पाने का। और जब उनकी पहली किताब को शुरू में उतनी पहचान नहीं मिली, तो इसने उन्हें ये भी सिखाया कि सच्ची गवाही देने के लिए सिर्फ सच बोलना काफी नहीं है, उसे असरदार तरीके से पहुंचाने के लिए लिखने की कला, शिल्प भी जरूरी है। इसने शायद उन्हें एक और ज्यादा सचेत और कुशल लेखक बनाया।
लेवी के जीवन और उनके लेखन से हम आज क्या मानवीय सबक सीख सकते हैं? उनकी कहानी दशकों पुरानी है, पर क्या आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है?
मुझे तो लगता है ये पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। पहला और सबसे गहरा सबक शायद नैतिक पैमानों की नाजुकता के बारे में है। लेवी हमें दिखाते हैं कि जिसे हम आम जिंदगी में सही और गलत मानते हैं, वो पैमाने चरम दबाव में कितनी आसानी से टूट सकते हैं। जिसे हम शायद कायरता समझें, वो किसी के लिए जिंदा रहने की अकेली तरकीब हो सकती है, और जिसे हम बहादुरी कहते हैं, वो अक्सर हालात और किस्मत का खेल होता है। यह हमें नैतिक फैसले करने में ज्यादा विनम्र होना सिखाता है।
और गवाही देने की जिम्मेदारी, इसके बारे में भी उन्होंने काफी कुछ कहा।
हाँ, उनका मानना था कि जो बच गए हैं उनका यह फर्ज है कि वो बोलें, गवाही दें, खासकर उनके लिए जो नहीं बोल सकते। लेकिन ये गवाही हमेशा अधूरी रहेगी क्योंकि पूरी कहानी तो सिर्फ डूबे हुए ही जानते थे।
तो गवाही देते समय अपनी सीमाओं को जानना भी जरूरी है।
बिल्कुल, ये दावा ना करना कि आप पूरी सच्चाई जानते हैं, लेकिन जो आप जानते हैं उसे ईमानदारी से बताना।
उन्होंने उन कहानियों के खतरे के बारे में भी चेताया था जो दुख में कोई मतलब ढूंढने की कोशिश करती हैं।
हाँ, हम इंसान हैं, हम अनुभवों में मतलब खोजना चाहते हैं, खासकर दर्दनाक अनुभवों में। हम चाहते हैं कि पीड़ा का कोई मकसद हो, कोई सबक मिले, कोई उद्धार हो। लेकिन लेवी चेतावनी देते हैं कि ऐसी कहानियां गढ़ने की कोशिश में हम अक्सर सच को तोड़ मरोड़ देते हैं। ऑशविट्स जैसी चीज की कोई गहरी छिपी हुई मीनिंग नहीं थी, वो बेमतलब, बेतुकी, बुराई थी। इस बेमतलब ही को स्वीकार करना मुश्किल है, पर सच के लिए जरूरी है।
इसके लिए बौद्धिक ईमानदारी चाहिए।
हाँ, और यही चौथा सबक है, बौद्धिक ईमानदारी की जरूरत। लेवी का पूरा काम जटिलता, विरोधाभास, यहां तक कि अपनी निजी मिलीभगत को भी स्वीकार करने का साहस दिखाता है। वो आसान जवाबों से बचते हैं, तब भी जब वो ज्यादा संतोषजनक लगें। ये आज के जमाने में बहुत अहम है, जहां चीजों को अक्सर सिर्फ काले और सफेद में देखा जाता है।
और अंत में वो जो संचार की सीमाओं का एहसास था,
वो भी बहुत मार्मिक है। लेवी अक्सर उस खाई के बारे में लिखते हैं जो चरम अनुभव झेलने वालों और सामान्य जीवन जीने वालों के बीच होती है। भाषा कई बार उस भयानक अनुभव को बताने में नाकाफी लगती है। उन्होंने कई उत्तरजीवियों के एक आम बुरे सपने का जिक्र किया है, घर लौटकर अपनी कहानी सुनाना, लेकिन घर वाले सुन नहीं रहे या समझ नहीं पा रहे। ये दिखाता है कि शायद सबसे गहरे इंसानी अनुभव वो होते हैं जिन्हें पूरी तरह बताया ही नहीं जा सकता।
आज के सुनने वालों के लिए ये बातें कैसे प्रासंगिक हैं? आज की दुनिया में लेवी की सोच का क्या महत्व है?
महत्व चौंकाने वाला है। सच कहूं तो हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां दुनिया के कई हिस्सों में हम अधिनायकवाद को बढ़ते देख रहे हैं। ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, दुष्प्रचार है, और जिसे वैकल्पिक तथ्य कहा जाता है वो है।
हाँ,
लेवी का विश्लेषण कि कैसे आम पढ़े लिखे लोग धीरे धीरे जुल्म और क्रूरता में भागीदार बन सकते हैं, सत्ता के आगे झुककर या वैचारिक जुनून में या सिर्फ उदासीनता के कारण, ये आज की राजनीतिक स्थितियों को समझने के लिए सीधे तौर पर लागू होता है।
स्मृति और सच के बारे में उनकी चेतावनियां भी आज बहुत मौजूद लगती है ना, खासकर गलत सूचना और सोशल मीडिया के इस दौर में।
बिल्कुल, लेवी हमें याद दिलाते हैं कि याददाश्त भरोसेमंद नहीं होती, वो वक्त के साथ बदलती है, सरल होती जाती है और बाहरी असर से आसानी से बिगड़ सकती है। ये आज के इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के जमाने में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हमें स्रोतों पर सवाल उठाना, आलोचनात्मक ढंग से सोचना और सच के प्रति प्रतिबद्ध रहना सीखना होगा।
और उनका वो ग्रे जोन का विश्लेषण,
वो आज की नैतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक जरूरी औजार है। दुनिया में अक्सर ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पीड़ित और अपराधी की सीधी सादी कहानी काफी नहीं होती। लेवी हमें सिखाते हैं कि हम नैतिक जटिलता को स्वीकार करें, समझें कि कैसे व्यवस्थाएं लोगों को फंसा सकती हैं और उन्हें मुश्किल फैसलों का सामना करने पर मजबूर कर सकती हैं।
ये हमें ज्यादा सूक्ष्म तरीके से सोचने में मदद करता है।
हाँ, और ज्यादा सहानुभूति से नैतिक फैसले लेने में। संक्षेप में कहें तो लेवी की बौद्धिक ईमानदारी, जटिलता को स्वीकार करने का उनका साहस और सच के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, ये आज हमारे आपसी संवाद के लिए एक बेहतरीन मॉडल हैं।
इस गहरी और यकीनन महत्वपूर्ण चर्चा के बाद अगर हमें तीन मुख्य निष्कर्ष निकालने हों तो वो क्या होंगे? चलिए शुरुआत करते हैं एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि से।
सबसे गहरी भावनात्मक अंतर्दृष्टि शायद उत्तरजीवी के गहरे अकेलेपन और शर्म की है। ये एक भयानक बोझ है, उन लाखों मृतकों की ओर से बोलने की जिम्मेदारी लेना जिन्हें आप पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं कर सकते, और ये जानते हुए कि आपका अपना बचना ही शायद समझौतों और भाग्य का नतीजा था।
शर्म,
हाँ, लेवी जीवित रहने की शर्म, अपमानित होने की शर्म और इंसानियत के सबसे बुरे पहलू को देखने और उसे रोकने में लाचार होने की शर्म के बारे में लिखते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदा रहने और गवाही देने की एक भारी अनदेखी कीमत होती है।
और एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि,
वो निसंदेह द ग्रे जोन की अवधारणा है। यह सिर्फ होलोकॉस्ट को समझने के लिए ही नहीं, बल्कि आम तौर पर सत्ता, नैतिकता और इंसानी बर्ताव को समझने के लिए भी क्रांतिकारी है। ये पीड़ित और अपराधी के बीच की आसान लकीरों को मिटाकर नैतिक चुनाव की हमारी पूरी समझ को चुनौती देती है। ये दिखाती है कि कैसे जुल्मी व्यवस्थाएं सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी कुचलती हैं। लोगों को भ्रष्ट करके, उन्हें जिंदा रहने के लिए भयानक नैतिक समझौतों में भकेल कर, ये नाजी सिस्टम की असली शैतानी प्रतिभा को उजागर करता है। इंसान की नैतिक दुनिया को नष्ट करना, शायद उसे शारीरिक रूप से नष्ट करने से भी पहले।
और अंत में एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि जो हम सबके लिए प्रासंगिक हो,
वो है गवाह होने का कर्तव्य। अन्याय और क्रूरता के सामने हमारा सबसे अहम फर्ज है साफ साफ देखना, सही सही याद रखना और जितना हो सके सच्चाई से बोलना। लेवी हमें सिखाते हैं कि हमें अतीत को आरामदायक सीधी सादी कहानियों में ढालने की अपनी इंसानी आदत से लगातार लड़ना चाहिए।
भले ही याददाश्त अधूरी हो, भाषा नाकाफी हो,
हाँ, भले ही नजर सीमित हो, फिर भी असहज सच की गवाही देना, जटिलता को स्वीकार करना एक गहरा नैतिक काम है। शायद यही दोहराव के खिलाफ हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है।
लेवी की विरासत हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज की इस जटिल और अक्सर बंटी हुई दुनिया में, जहां सच और झूठ के बीच की लकीरें धुंधली की जा रही हैं, हम अपने समय के ग्रे जोन को पहचानने और अन्याय के खिलाफ स्पष्ट रूप से बोलने की नैतिक जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं, ये एक सवाल है जो लेवी हमारे लिए छोड़ गए हैं। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।